मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूं और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपके सिलेबस के सेकेंड यूनिट के अंतर्गत अगला अध्याय है जाति व्यवस्था, जिसकी भूमिका निम्न प्रकार है। भारतीय समाज आज केवल चार वर्णों में ही विभाजित नहीं है, बल्कि व्यवहारिक रूप में हमारी सामाजिक संरचना का निर्माण उन हजारों जातियों और उपजातियों से हुआ है जो जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि भारतीय समाज को अक्सर एक जातिगत समाज कहकर परिभाषित कर दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि भारतीय सामाजिक संगठन को अस्थायी बनाने और व्यक्ति की परिस्थिति तथा भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए हमारा संपूर्ण अतीत तरह तरह के परीक्षणों से भरा पड़ा है। परीक्षण के तौर पर बनाई गई व्यवस्थाओं में से कुछ ने बहुत अस्थायी रूप ग्रहण कर लिया है, जबकि अनेक व्यवस्थाएं केवल सिद्धांत रूप में ही रहकर समाप्त हो गई। इन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को जितने अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से प्रभावित किया, उसकी तुलना किसी भी दूसरी व्यवस्था से नहीं की जा सकती। इसका प्रभाव भारत में कितना व्यापक है, यह इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण समानता का दावा करने वाले मुसलमान और ईसाई भी इसके प्रभाव से अछूते नहीं रह रहे हैं। भारत में 1911 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में 94 जातीय समूह पाए गए, जबकि आज इनकी संख्या इससे भी अधिक। इसी प्रकार ईसाई भी अनेक उच्च और निम्न जाति स्थिति वाले समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। सन 1931 की जनगणना में सामाजिक स्थिति की विभिन्नता के आधार पर भारत में 2993 जातियां और उपजातियां पाई गई। डॉक्टर घुरिये ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि भारत के प्रत्येक भाषाई क्षेत्र में आज लगभग 2000 जातियां विद्यमान हैं। स्पष्ट है कि इतनी अधिक जातियों वाली व्यवस्था को किसी एक या दो परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हट्टन का कथन है कि जाति व्यवस्था के समुचित अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होगी। इस कथन से जाति व्यवस्था की जटिलता और व्यापकता का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। हेडिंग है जाति का अर्थ तथा परिभाषा। अधिकांश पश्चिमी विचारकों ने जाति शब्द को पुर्तगाली शब्द कास्टा से संबंधित मान लिया है। कास्टा का अर्थ है प्रजाति अथवा प्रजाति भेद। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेसिया डी ओर्ट ने प्रजातीय समूहों के विभेद के अर्थ में किया था। बाद में अब्बे दुबाय जैसे महान फ्रांसीसी विचारकों ने भी कास्ट शब्द का प्रयोग प्रजाति विभिन्नता को स्पष्ट करने के लिए ही किया। इसके विपरीत भारतीय जाति व्यवस्था का संबंध प्रजातीय विभिन्नता से नहीं, बल्कि सामाजिक स्तरीकरण के एक ऐसे रूप को स्पष्ट करती है जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर होता है। इस दृष्टिकोण से जाति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के शब्द जाता से मानी जानी चाहिए, जिसका तात्पर्य व्यक्ति के जन्म अथवा जन्म के परिवार को सर्वाधिक महत्व देने से है। यद्यपि सभी पश्चिमी विद्वानों और भारतीय विचारकों ने जाति व्यवस्था को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, लेकिन प्रस्तुत विवेचन से हम उन्हीं परिभाषाओं का संक्षेप में उल्लेख कर रहे हैं जो वास्तविकता के अत्यधिक निकट है। ब्लंट ने जाति के अधिकांश पक्षों को सम्मिलित करते हुए इसे इस प्रकार परिभाषित किया है। जाति एक अंतर्विहीन समूह अथवा अंतर्विवाही समूहों का संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता अनुवांशिक होती है, जो सामाजिक संपर्क के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। इसके सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय करते हैं अथवा किसी असामान्य आधार पर ही अपने उत्पत्ति का दावा करते हैं और इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होते हैं। ब्लंट की इस परिभाषा का सबसे बड़ा दोष यह है कि आपने एक जाति की उत्पत्ति को एक सामान्य पूर्वज से संबंध माना है। वास्तव में कोई भी जात अपनी उत्पत्ति एक सामान्य पूर्वज से नहीं मानती, बल्कि ऐसा विश्वास केवल गोत्र की उत्पत्ति से ही संबंधित है। श्री केतकर ने जाति व्यवस्था को इसकी दो प्रमुख विशेषताओं के आधार पर परिभाषित करते हुए कहा है कि जाति एक सामाजिक समूह है जिसमें एक विशेष जाति की सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया हो, तथा दूसरा जिसके सदस्यों पर एक दृढ़ सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने पर निषेध लगा दिया जाता है। केतकर ने कुछ स्थानों पर जाति के एक सामान्य नाम और संस्करण की भी चर्चा की है। इस प्रकार निश्चय ही यह परिभाषा ब्लंट की परिभाषा से अधिक वैज्ञानिक है। हट्टन ने जाति पर दी गई लगभग सभी प्रमुख परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि जाति एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज अनेक आत्म केंद्रित तथा एक दूसरे से पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर परंपरा द्वारा निर्धारित होते हैं। पश्चिमी विचारकों की सूची में हट्टन के विचार यद्यपि अत्यधिक संतुलित हैं, लेकिन जिन अर्थों में हट्टन ने आत्मकेंद्रित शब्द का प्रयोग किया है उसका संबंध केवल जातिवाद से है, जाति व्यवस्था से नहीं। उपर्युक्त परिभाषाओं के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने जाति व्यवस्था से संबंध निषेधों का उल्लेख न करके इसे केवल सामान्य आधार पर ही परिभाषित किया है। कूले का कथन है कि जब एक वर्ग पूर्णतः अनुवांशिक होता है तब हम उसे एक जाति कह सकते हैं। लगभग इसी के अनुरूप मजुमदार और मदन ने यह निष्कर्ष दिया है कि जाति एक बंद वर्ग है। डॉक्टर इरावती कर्वे ने जाति को एक ऐसे समूह के रूप में स्पष्ट किया है जिसके सदस्य रक्त अथवा विवाह के द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं। इस दृष्टिकोण से आपका कथन है कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तविकता यह है कि भारतीय सामाजिक संरचना में जाति व्यवस्था का एक आधारभूत संस्था है, लेकिन इसका स्वरूप विभिन्न स्थानों और विभिन्न कालों में एक दूसरे से इतना भिन्न रहा है कि किसी भी एक परिभाषा को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। हट्टन ने ऐसी अनेक कठिनाइयों का उल्लेख किया है जिसके कारण जाति को किसी एक परिभाषा द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था में जन्म का महत्व सबसे अधिक है, जबकि अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि महत्वपूर्ण कार्यों के द्वारा अनेक व्यक्तियों अथवा समूहों की जातिगत सदस्यता में परिवर्तन हो गया। विभिन्न स्थानों पर जाति के नियम भी समान प्रकृति के नहीं मिलते। एक जाति के अंतर्गत अनेक उपजातियां किसी स्थान पर अंतर्विवाह के नियम को मानती हैं और किसी स्थान पर बहिर्विवाह के नियम को। इन सभी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इनके दत्ता और डॉक्टर घुरिये जैसे विद्वानों ने जाति की कोई परिभाषा न देकर इसे कुछ सामान्य विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है। अगली हेडिंग है जाति व्यवस्था की विशेषताएं। इनके दत्ता के अनुसार संपूर्ण जाति व्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। पहला, एक जात के सदस्य अपनी जात के बाहर विवाह नहीं कर सकते। दूसरा, एक जात के सदस्यों पर दूसरी जात के सदस्यों के साथ खान पान के संबंध रखने पर प्रतिबंध, यद्यपि सभी जातियों के लिए ये प्रतिबंध समान प्रकृति के नहीं है। तीसरा, अधिकांश जातियों के अपने निश्चित व्यवसाय होते हैं। चौथा, सभी जातियों में ऊंच नीच का एक संस्करण होता है जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च है। पांचवा, व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है। यदि उसे अपनी जाति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण जाति से बहिष्कृत न कर दिया जाए। छठा, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर आधारित है। डॉक्टर घुरिये ने जाति व्यवस्था की संरचना और प्रतिबंधों के आधार पर इसकी छह महत्वपूर्ण विशेषताओं का उल्लेख किया है। डॉक्टर घुरिये ने आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि ये विशेषताएं जाति व्यवस्था के मूल रूप से संबंध हैं, वर्तमान रूप से नहीं। पहला हेडिंग है समाज का खंडनात्मक विभाजन। जाति व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण हिंदू समाज अनेक खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में सदस्यों की सामाजिक स्थिति, उनके पारस्परिक दायित्व और जातिगत नियम उन्हें अपने समूह के प्रजातीय सजातीयता की चेतना उत्पन्न करते हैं। खंडनात्मक विभाजन के कारण प्रत्येक जाति के खंड की एक न्यायिक परिषद होती है जिसे जाति पंचायत कहा जाता है। इस परिषद का कार्य अपने सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना और जातिगत नियमों की अवहेलना करने पर उन्हें दंड देने का होता है। प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह जन्म, विवाह, मृत्यु, धार्मिक भोज अथवा संस्कार जैसे अवसरों पर अपनी जाति के सदस्यों को सहयोग दे। दूसरी हेडिंग है संस्तरण। संस्तरण का अर्थ है जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति की सामाजिक स्थिति दूसरी जाति की अपेक्षा ऊंची अथवा नीची होती है। इस संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च है और इसके बाद क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य तथा अस्पृश्य जातियों की स्थिति आती है। एक जाति के अंतर विभिन्न उपजातियों के बीच भी एक निश्चित संस्तरण पाया जाता है और इसी के संदर्भ में सदस्य एक दूसरे के संबंधों की स्थापना करते हैं। यद्यपि संपूर्ण भारत में जातिगत संस्तरण को मान्यता दी जाती है, लेकिन अपवाद के रूप में दक्षिण भारत की शिल्पी जाति का उल्लेख किया जा सकता है जो ब्राह्मणों द्वारा दी गई स्थिति के विरुद्ध सदैव अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए संघर्ष करती रही है। इस संबंध में एक विशेषता यह है कि जातिगत संस्तरण में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च और अस्पृश्य जातियों की स्थिति निम्नतम है, लेकिन स्वयं इन वर्णों में जिन सैकड़ों जातियों का निर्माण हुआ है उनके बीच कोई निश्चित संस्तरण नहीं पाया गया है। तीसरी हेडिंग है खान पान और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति के लिए खान पान और सामाजिक सहवास की स्वीकृति से संबंधित बहुत से नियम हैं। खान पान के दृष्टिकोण से भोजन दो प्रकार का, कच्चा और पक्का होता है। कच्चे भोजन से संबंधित नियम अधिक कठोर हैं, जबकि पक्के भोजन के नियम काफी लोचपूर्ण हैं। सामान्य नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी जाति से बाहर के सदस्य द्वारा बनाया गया कच्चा भोजन स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन व्यवहार में निम्न जातियां अपने से उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा बनाया गया कच्चा भोजन ग्रहण कर लेती हैं। खान पान के नियंत्रण काव्य कुब्ज ब्राह्मणों से सबसे अधिक जटिल रूप में है। सामाजिक सहवास के नियम उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक कठोर रहे हैं। इन नियमों के द्वारा उच्च जाति के सदस्यों पर अत्यंत अन्यत्य जातियों के सदस्यों का स्पर्श करने, उनके समीप रहने अथवा उनसे बातचीत करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार विशेषता जाति व्यवस्था के निषेधात्मक पहलू को स्पष्ट करती है। चौथी हेडिंग है नागरिक तथा धार्मिक निर्योग्यता और विशेष अधिकार। जातिगत संस्करण के अनुसार उच्च जातियों को नागरिक और धार्मिक क्षेत्र में विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि निम्न जातियों पर इनकी निर्योग्यताएं लाद दी गई हैं। दक्षिण भारत के अधिकांश स्थानों पर उन्हें सार्वजनिक कुओं, सड़कों और तालाबों का उपयोग करने तक से वंचित रखा गया। पेशवा शासनकाल में निम्न जातियों की निर्योग्यताएं इतनी बढ़ा दी गई कि माहर और मांग जाति के व्यक्तियों को पूना के मुख्य द्वार के अंदर शाम के 3 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था। मैसूर में अस्पृश्य जातियों की सड़कें और बस्तियां भी नगर के बाहर रखी गईं, जिससे वे उच्च जातियों के सामने आ न सके। यह विशेष अधिकार और निर्योग्यताएं कितनी हास्यास्पद थे, इसका उल्लेख करते हुए डॉक्टर सक्सेना ने यह उदाहरण भी दिया है कि अनेक उच्च जातियों के व्यक्ति निम्न जातियों के सदस्यों से पानी भरवा सकते थे, लेकिन उनके बर्तन में पानी नहीं पी सकते थे। धार्मिक क्षेत्र में इन निर्योग्यताओं का रूप सबसे अधिक विषम रहा है। पांचवी हेडिंग है व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव पर नियंत्रण। सामान्यतः प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत व्यवसाय होता है और उस जाति के प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक और धार्मिक दायित्व है कि वह इसी व्यवसाय के द्वारा आजीविका प्राप्त करे। रिकार्डस के अनुसार कृषि खेतों में श्रम करना, सेना में नौकरी करना और सामान्य प्रकृति का व्यापार आदि ऐसे व्यवसाय हैं जिनको करने की अनुमति लगभग सभी जातियों को प्राप्त है। इससे भी स्पष्ट होता है कि केवल ब्राह्मणों और शूद्रों का व्यवसाय ही निश्चित प्रकृति का है, जबकि अन्य जातियों के पेशों में विभाजन की कोई निश्चित रेखा नहीं रह पाई जाती। इसके उपरांत भी एक जाति के सदस्य जिस पेशे पर अपना अनुवांशिक अधिकार समझते हैं उसमें अन्य जातियों के सदस्यों के प्रवेश को रोकने का प्रयत्न किया जाता है। छठवां हेडिंग है विवाह पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था का संभवतः सबसे कठोर प्रतिबंध विवाह से संबंधित है। किसी भी व्यक्ति को अपनी जात अथवा उपजाति के बाहर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती। यद्यपि कुछ पर्वतीय क्षेत्रों और मालाबार के नंबूदारी ब्राह्मणों में अपनी जात से निम्न जाति वाली लड़की से विवाह कर लेने का प्रचलन रहा है, लेकिन यह भी जाति के अनुलोम और कुलीन विवाह के नियम के अंतर्गत ही है। इस प्रकार वेस्टरमार्क के अनुसार अंतर विवाह जाति व्यवस्था का सार तत्व है और किसी भी सदस्य द्वारा इस नियम का उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध समझा जाता है। ऐसा करने पर कभी कभी व्यक्ति को अपनी जाति की सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया जाता है। गेट ने लिखा है संभवतः अंतर विवाह का प्रचलन रक्त की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि जिससे जातिगत मिश्रण को रोककर उपजातियों की संख्या में होने वाली वृद्धि को रोका जा सके। सच तो यह है कि जाति व्यवस्था के सभी पक्षों में तीव्र परिवर्तन हो जाने के बाद भी अंतर विवाह संबंधी प्रतिबंध आज भी उतने ही प्रभावपूर्ण बने हुए हैं। जाति व्यवस्था के उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर हिबेट का कथन है कि जाति व्यवस्था समुदाय द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत नियमों की वह कार्यात्मक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्देश्यपूर्ण रूप से सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किया गया। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि जाति व्यवस्था हिंदू सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसका उद्देश्य जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को निर्धारित करके अपेक्षाकृत एक बंद समाज का निर्माण करना है।